بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، اپنے آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ شمس کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا آشرے پراپت کیا ہے سورگی محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ سوگند ہے سوریہ کی اور اس کے پرکاش کی اور چندرما کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ دھرتی کو پرکاشت کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آکاش کی سوگند اور جس نے اسے اٹھایا، اور دھرتی کی اور جس نے اسے بچھایا، اور آتما کی اور جس نے اسے ٹھیک کیا، پھر اسے برائی اور بھلائی کا مارگ دکھا دیا، निश्चित रूप से वही सफल रहा जिसने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, और दुर्भाग्य हुआ जिसने उसे पापों से दूषित कर लिया। समूद जाति ने अपनी उद्दंडता के कारण पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भागी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने के स्थान का ध्यान रखना। किंतु उन्होंने उसे झुटला दिया और उस ऊंटनी की हत्या कर दी, तो उनके पालनहार ने उनके पाप के कारण उन्हें दंडित किया और उन्हें तथा उनकी बस्ती को मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया, और उसे इस दंड के परिणाम का कोई भय नहीं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोता, ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7445 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज शनिवार है, दय के 20 रबी उसानी की 25 और जनवरी की 9 तारीख। कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है, पहले आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद आप सुनेंगे अनमोल बातें, और फिर राजनीतिक चर्चा पेश होगी, जिसके बाद आप सुनेंगे ईरान भ्रमण प्रोग्राम, और सभा का अंतिम प्रोग्राम है नया सवेरा। हजरत अली इस्लाम फरमाते हैं कि झूठ बोलने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि झूठा व्यक्ति जब सच बोलता है तो उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 00989035065492। और अब आप विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुख्य समाचारों का असर। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि ईरानी राष्ट्र को हम विदेशी टीकों की बलि नहीं चढ़ाएंगे। जकार्ता एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज उड़ान भरने के बाद लापता हो गया, 59 मुसाफिर सवार थे। मच के पीड़ित परिवारों से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, भारत पर सांप्रदायिकता फैलाने का इल्जाम लगाया है। महाराष्ट्र में एक अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद अली गुमी से विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि हम ईरानी राष्ट्र को विदेशी टीकों की बलि नहीं चढ़ाएंगे। डॉक्टर हसन रूहानी ने शनिवार को कोरोना से मुकाबले की राष्ट्रीय समिति की बैठक में कहा कि विदेशी कंपनियां ऐसे टीके ईरान को देना चाहती जिसे लोगों पर टेस्ट किया जाए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे रोक दिया। उन्होंने कोरोना के टीके को खरीदने के बारे में कुछ अफवाहों की ओर इशारा करते हुए कहा कि IRIB सहित देश का मीडिया इस तरह की अफवाहों से निपटे और जनता सिर्फ डॉक्टरों की बात सुने, दुरुपयोग करने वालों का धोखा न खाए। ईरानी राष्ट्रपति ने टीके की खरीदारी को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए बल दिया कि टीका लगाने का मतलब स्वास्थ्य नियमों की अनदेखी नहीं होना चाहिए। लोग ये न समझे कि टीका लगवा लिया है तो अब कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य नियमों का पालन जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर टीका लगने का रिजल्ट 100% सही हो, हालांकि किसी भी टीके में ऐसा नहीं होता, तब भी टीके का असर जाहिर होने में कई हफ्ते लगते हैं।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके अमेरिका में चुनावी हिंसा पर पश्चिमी नेताओं की प्रतिक्रिया पर व्यंग कसा है तथा उनके दोहरे मापदंडों की आलोचना की है। विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने ट्वीट किया है कि जिन लोगों ने ट्रंप की गैर कानूनी गुंडागर्दी के सामने सिर झुकाया है ताकि हमारी जनता के खर्चे से खुद को सुरक्षित करें, अब उनकी ओर से कानून के उल्लंघन की आलोचना कर रहे हैं।
जकार्ता से एक हवाई जहाज उड़ान भरने के बाद उसका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया है, उस पर 59 मुसाफिर सवार थे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के सुकार्नो हट्टा एयरपोर्ट से एक मुसाफिर जहाज का शनिवार को उड़ान भरने के बाद कंट्रोल टावर से संपर्क टूट गया। انڈونیشیا کے ٹرانسپورٹیشن سیفٹی کمیٹی کے پرمکھ سوریانتو کاہیونو نے اس گھٹنا کی جانکاری دی. سرکاری نیوز ایجنسی انترا کے مطابق بوئنگ 737 کا یہ ہوائی جہاز شری وجے ایئر لائن کا تھا. اڑان SJY-182 جکارتا سے پونٹیانک جا رہی تھی کہ اڑان بھرنے کے بعد استھانی سمے انوسار دوپہر بعد 2:40 پر اس کا سمپرک ٹوٹ گیا. شری وجے ایئر کی اور سے جاری بیان کے مطابق جکارتا سے 11 نوٹیکل میل پر ہوائی جہاز سے سمپرک ٹوٹا. اس وقت جہاز 11,000 فٹ کی اونچائی پر اڑان بھر رہا تھا.
پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے آروپ لگایا کہ بلوچستان کے آتنکی گھٹنا کے پیچھے بھارت ہے. کوئٹہ کے دورے پر پہنچے عمران خان نے آج مشق کے آتنکی گھٹنا کے پیڑت پریوار والوں سے بھینٹ کی. انہوں نے کہا کہ ہم مشق کے پربھاوتوں کا پورا خیال رکھیں گے اور یہاں کے لوگوں کو پوری سرکشا اپلبدھ کرائیں گے. عمران خان نے مشق کے آتنکی گھٹنا پر کھید ویکت کیا. عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں شیعہ سنی سامپردائک ہنسا پھیلانا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ مارچ میں ہی کیبنیٹ کو بھارت کی اس نیت سے سوچت کر دیا گیا تھا. عمران کا کہنا تھا کہ شیعہ سنی سامپردائک ہنسا پھیلانے والوں کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. پاکستان کے پردھان منتری نے کہا کہ آتنکی گٹ داعش کو بھی بھارت کا بھرپور سمرتھن حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ آتنکی گٹوں کا داعش کے ساتھ گٹھ بندھن ہو چکا ہے. عمران خان نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ افغانستان میں یدھ سماپت ہونے کے بعد سشستر گٹھوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. ان کا کہنا تھا کہ سرکشا بلوں کا ایک دل بنایا جا رہا ہے جس کا ادیش ہزارہ کمیونٹی کو سرکشا اپلبدھ کرانا ہے. عمران خان نے کہا کہ ہمارا ادیش ہزارہ کمیونٹی کو یہ وشواس دلانا ہے کہ آپ کی سرکشا کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے.
پاکستان میں ہزارہ شرمکوں کی جگھن ہتیا کے بعد آرم ہونے والا دھرنا ختم ہو گیا ہے. پاکستانی سوتروں کے مطابق بلوچستان کے مکھیہ منتری جام کمال خان اور دھرنا کرنے والوں کی سمیتی کے بیچ وارتا سفل ہو گئی, جس کے بعد انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ شہید ہونے والوں کو دفن کر دیا جائے گا.
مہاراشٹر میں ایک اسپتال میں آگ لگنے سے 10 نوزائید بچوں کی موت ہو گئی. پشچمی راجیہ مہاراشٹر کے بھنڈارا ضلع میں شکروار کو یہ گھٹنا گھٹی. دوردرشن کے انوسار شکروار کو بھنڈارا شہر کے ضلع اسپتال میں بیمار نوزائید دیکھ بھال اکائی میں آگ لگ گئی, جس سے 10 نوزائید شیشوں کی موت ہو گئی. فائر فائٹرز 7 نوزائید کو بچانے میں سفل ہوئے. مہاراشٹر کے سواستھیہ منتری راجیش ٹوپے کے حوالے سے رپورٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ پھیلی. راجیش ٹوپے نے کہا کہ گھٹنا کی جانچ جاری ہے اور پیڑت پریوار میں ہر ایک کو 5-5 لاکھ روپے معاوضہ کے طور پر دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اس گھٹنا میں جو بھی دوشی پایا گیا ہے اسے نہیں بخشا جائے گا اور یہ بات سنشچت کی جائے گی کہ آگے سے اس طرح کی گھٹنا نہ ہو.
عراق کے سوئم سیوی بل کے سچیو نے بل دیا ہے کہ عراق نے آتنکواد کے خلاف برسوں تک سنگھرش اور عراقی نگروں کی آزادی کے دوران امریکی نیتت میں بنے انتراشٹری گٹھ بندھن سے کوئی مدد نہیں لیے, بلکہ اس گٹھ بندھن سے اسے نقصان ہی ہوا ہے. تحسین مطر العوادی نے کہا کہ امریکیوں اور اسرائیلیوں نے عراقی سوئم سیوی بل کے سبھی ٹھکانوں اور چھاونیوں پر حملے کیے ہیں.
لبنان کے حزب اللہ آندولن کے مہا سچیو سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکی کانگریس میں جو ہوا ہے وہ خطرناک لکشن ہے. سید حسن نصر اللہ نے شکروار کی رات اپنے ایک بھاشن میں کہا کہ امریکیوں نے اپنے دیش کے لیے ٹرمپ کے راجنیتک خطرے کو بھانپ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ حالانکہ علاقے میں امریکہ کے متروں نے کانگریس کی عمارت پر ٹرمپ کے سمرتھکوں کے حملے کو سامانیہ درشانے کی پوری کوشش کی, لیکن اس گھٹنا نے امریکی پرجاتنتر کی سچائی دنیا کو دکھا دی. سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکی اس طرح کی گھٹنائیں انیہ دیشوں میں کرانے کی عادت رکھتے ہیں, لیکن ٹرمپ نے وہ سب امریکہ میں ہی کرا دیا. انہوں نے شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی ہتیا سہت حالیہ ورشوں میں امریکی کاروائیوں کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ امریکہ کے راجنیتک و سینک سامراجواد کے نوسکھیاپن کے ادھارن ہیں.
امریکہ کے فیڈرل پروزیکیوٹر نے کہا کہ پولیس کو سنسد کی عمارت کیپیٹل کے قریب جہاں بدھوار کو دنگا ہوا تھا بموں اور بندوقوں سے بھرا ایک پک اپ ٹرک ملا. اس دنگے کی جانچ کے دوران نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں. سی این این کے مطابق الاباما کے ایک آدمی نے کتھت روپ سے بدھوار کو کیپیٹل عمارت سے بس 2 بلاک دور ایک پک اپ ٹرک پارک کیا تھا, جس میں 1 رائفل 1 ہینڈ گن اور 11 دیسی بم رکھے ہوئے تھے. گھنٹوں بعد ادھیکاریوں کا اس ٹرک کی اور دھیان گیا. ایک دوسرا آدمی واشنگٹن میں رائفل اور سینکڑوں گولیوں کے ساتھ نظر آیا, جس نے اپنے جان پہچان کے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے ادھیکش نینسی پیلوسی کو گولی مارنا یا گاڑی سے کچلنا چاہتا تھا۔
اسرائیل میں کرائے گئے ایک سرویکشن سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل میں بہت سے لوگ وہاں پر امریکی کانگریس جیسی گھٹنا کے گھٹت ہونے کو لے کر بہت چنتت ہیں۔ بہت سے اسرائیلیوں کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں ہمارے یہاں بھی امریکہ جیسی گھٹنا نہ دہرائی جائے۔ جیروسلم پوسٹ کے انوسار ایک حالیہ سرویکشن کے پرینام بتاتے ہیں کہ 65% سے ادھک زائنیوں کو اس بات کی سمبھاونا ہے کہ 6 جنوری کو جو کچھ امریکی کانگریس میں گھٹا ویسا ہی کچھ اسرائیلی سنسد کنسنٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ریڈیو تہران سے انتراشٹریہ سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ انمول باتیں۔ कार्यक्रम अनमोल बातें में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम वादा करने या वचन पूरा करने के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। वादा वफा करना यानी अपने वादे पर अमल करना वो चीज है जिसे हर समाज में पसंद किया जाता है, اور جو انسان اپنے کیے گئے وعدے پر عمل نہیں کرتا ہے تو کوئی بھی ویکتی اس عادت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جس طرح سچ بولنا سب کو پسند ہے اور ہر سماج میں سچ بولنے والے کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، روچک بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس سے کوئی جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ بولنے والا بھی سچ کو پسند کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ پرلے کے دن تم میں سب سے ادھک میرے نکٹ وہ ویکتی ہوگا جو سب سے ادھک سچ بولتا ہوگا اور امانت ادا کرنے میں سب سے اچھا ہوگا اور وعدہ وفا کرنے یا اپنے وچن پر عمل کرنے میں سب سے اچھا ہوگا اور ویوہار میں تم میں سب سے اچھا ہوگا اور لوگوں سے سب سے ادھک نکٹ ہوگا۔ ایک ان حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان ایشور اور پرلے کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ یہاں اس بات کا الیکھ آوشک ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر کسی مومن سے وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے، پرنتو اگر کسی غیر مومن سے وعدہ کیا ہے تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ انسان کو اپنے وعدے اور وچن پر عمل کرنا چاہیے، اور اس میں اس بات سے کوئی انتر نہیں پڑتا کہ وعدہ جس سے کیا ہے اس کا دھرم یا جاتی کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی جیون شیلی اس بات کی سوچک ہے کہ انہوں نے جس سے بھی وعدہ کیا اسے نبھایا اور جس کی بھی امانت ان کے پاس تھی اسے واپس کیا۔ پیغمبر اسلام جب 3 ورشوں تک شب ابی طالب میں تھے اور کافروں و انیکیشور وادیوں نے ان کا کڑا پریویشٹن کر رکھا تھا، تب انہوں نے ان سے جو سندھی کی تھی اس کا پالن کیا۔ اسی پرکار پیغمبر اسلام نے جب مکہ سے مدینہ پلائن کیا تھا، جب جن کافروں اور انیکیشور وادیوں نے ان کے پاس امانتیں رکھی تھیں ان سب کو حضرت علی علیہ السلام نے مدینہ آنے سے پہلے واپس کیا تھا۔ روچک بات یہ ہے کہ لگ بھگ ساری امانتیں کافروں اور انیکیشور وادیوں کی تھیں، اور انہوں نے ہی پیغمبر اسلام کو صادق ارتھات سچ بولنے والے اور امین کی اپادھی دی تھی۔ پیغمبر اسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ لین دین میں ان پر اتیاچار نہیں کرتا ہے उनसे झूठ नहीं बोलता है, वादा खिलाफी नहीं करता है, तो उसकी पुरुषार्थता परिपूर्ण हो गई है, न्याय स्पष्ट हो गया है, उसके साथ भाईचारा अनिवार्य और पीठ पीछे उसकी बुराई करना हराम है। पीठ पीछे बुराई को इस्लाम में बहुत सख्ती से मना किया गया है और महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में इसे मना करते हुए कहा है कि कोई एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई न करे। और क्या तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का मांस खाना पसंद करेगा? पीठ पीछे बुराई बहुत बड़ा पाप है। दूसरे शब्दों में ये इतना घृणित कार्य है कि महान ईश्वर ने इसकी उपमा मरे हुए भाई के मांस खाने से दी है। पीठ पीछे बुराई लोगों के एक दूसरे से दूरी का कारण बनती है, जबकि महान लोगों को एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने का आदेश देता है। पीठ पीछे बुराई से मानव समाज दूषित होता है और अगर ये बुराई आम हो जाए तो लोग एक से नफरत करने लगते हैं और लोगों के मध्य दूरियां पैदा हो जाती हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वादा खिलाफी करने से बचो, क्योंकि वादा खिलाफी तुमसे ईश्वर और लोगों की घृणा का कारण बनती है, और लोगों से ऐसा वादा न करो जिसे पूरा करने के प्रति तुम संतुष्ट नहीं हो। कभी ऐसे इंसान से दोस्ती पर भरोसा न करो जो अपने वादे को पूरा नहीं करता है। वादा वफा करने के महत्वपूर्ण होने के संबंध में इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी कार्य का सबसे अच्छा आरंभ सच्चाई और उसका सबसे अच्छा अंत वादे को वफा करना है। बहरहाल, सच बोलने, वादा वफा करने और अमानत के वापस करने पर इस्लाम में बहुत बल दिया गया है। यहाँ तक कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन बातें जिसके अंदर हो वो मुनाफिक है, चाहे वो नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, हज व उमरा किया हो, यद्यपि वो इंसान ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ। पहली चीज़ यह है कि जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाती है तो उसमें खयानत व विश्वास से काम लेता है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान कोरोना 19 के वैक्सीन से पहले टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस बी और काली खांसी जैसी बीमारियों से मुकाबले का टीका बना चुका है। टीबी से मुकाबले के लिए ईरान ने जो टीके बनाए थे उनका प्रयोग विश्व के 22 देशों के 30,80,00,000 लोगों पर किया जा चुका है। लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी को लेबनान की नई सरकार गठित करने की जिम्मेदारी 2 महीने पहले सौंपी गई थी, परंतु 77वीं मंत्रिमंडल की कुर्सियां अब भी खाली हैं। प्रतिरोध के प्रति वफादार धड़ा और हिजबुल्लाह सरकार के शीघ्र गठन के इच्छुक हैं। जम्मू में आज शिया फेडरेशन नामक धार्मिक गुट ने पाकिस्तान में हजारों शियों के साथ जो कुछ हुआ उस पर खेद प्रकट किया है। पाकिस्तान के क्वेटा नगर में मारे गए हजारों शिया मजदूरों के समर्थन में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारी हत्या के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। ईरान कोरोना 19 के वैक्सीन से पहले टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस बी और काली खांसी जैसी बीमारियों से मुकाबले का टीका बना चुका है। टीबी से मुकाबले के लिए ईरान ने जो टीके बनाए थे उनका प्रयोग विश्व के 22 देशों के 23,80,00,000 लोगों पर किया जा चुका है। मरिया मेहरदादी।
ईरान में टीके का निर्माण कोई नई बात नहीं है। इन समस्त वर्षों में ईरान के अंदर बने टीकों को विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए लगाया गया है, जैसे टीबी, चेचक, हेपाटाइटिस बी, बच्चों के विकलांग होने और काली खांसी आदि। लगभग 18 साल पहले ईरान अपने आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के अलावा लगभग 19 एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों को 80 लाख वैक्सीन के डोज निर्यात कर चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुमति से ईरान का परिचय वर्ष 1395 हिजरी शमसी में मध्य पूर्व में विकलांग बच्चों के टीके की आपूर्तिकर्ता देश के रूप में किया गया। स्वीडन ने वर्ष 2003 में ईरान के वैक्सीन के निर्माण के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जो इस बात की सूचक है कि जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान के अंदर वैक्सीन का निर्माण कोई असामान्य बात नहीं है। ईरान में वैक्सीन का निर्माण दो महत्वपूर्ण केंद्र कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट पास्तूर और दूसरे राजी वैक्सीन संस्थान। इस समय कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो केंद्र व संस्थाएं वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि वे पहली बार टीके का निर्माण कर रही हैं। जब 50 साल पहले इंस्टीट्यूट पास्तूर ईरान का गठन किया गया था, तो उसके आरंभिक वर्षों में 5 से अधिक बार ईरान में महामारी आई। इसी वजह से वैक्सीन का निर्माण इस केंद्र की कार्यसूची में शामिल हो गया। उस समय प्रतिदिन ईरान में 4 लाख वैक्सीन का निर्माण किया जाता था। उसके कुछ समय के बाद ईरान में 2,40,00,000 वैक्सीन के डोज का उत्पादन किया गया। यहां तक कि फ्रांस ने भी ईरान से वैक्सीन का आयात किया, जबकि वो स्वयं वैक्सीन का निर्माण करने वाला देश था। हिजरी शमसी के दूसरे दशक में फफोले से मुकाबले के लिए ईरान में जिस टीके का निर्माण हुआ था, उसका निर्यात इराक, अफगानिस्तान और मिस्र में किया गया। यूनिसेफ की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार टीबी से मुकाबले के लिए ईरान में जो टीके बने थे, उसका प्रयोग विश्व के 22 देशों के 23,80,00,000 बच्चों ने किया। ईरान में जो राजी संस्थान है, उसका गठन जानवरों की बीमारियों से मुकाबले के लिए किया गया था, पर इस समय वो इंसानों, जानवरों और पक्षियों की बीमारियों से मुकाबले के लिए भी टीकों का निर्माण कर रहा है। राजी संस्थान ने पहली बार गाय से संबंधित बीमारियों का मुकाबला करने का वैक्सीन बनाया था। उस समय सैकड़ों गायों की मौत हो गई थी। राजी संस्थान ने जो काम किया, उसे जहां एक संकट से मुक्ति मिली, वहीं इंसानों के कल्याण की दिशा में भी राजी संस्थान ने कदम उठाया है। अब 100 वर्षों का समय बीत रहा है और ईरान के दोनों संस्थान इस समय कोरोना से मुकाबले की दिशा में भी काम कर रहे हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी को लेबनान की नई सरकार गठित करने की जिम्मेदारी 2 महीने पहले दे दी गई थी, परंतु 77वीं मंत्रिमंडल की कुर्सियां अब भी खाली हैं। प्रतिरोध के प्रति वफादार धड़ा और हिजबुल्लाह सरकार के शीघ्र गठन के इच्छुक हैं। वफादार धड़ा साद हरीरी का आह्वान करता है कि वो नई सरकार के गठन के लिए विचार विमर्श नए सिरे से आरंभ करें। साथ ही सैयद मिसम अब्बास,
साद हरीरी को लेबनान की नई सरकार गठित करने की जिम्मेदारी 2 महीने पहले दी गई थी, लेकिन 77वें मंत्रिमंडल की कुर्सियां अब भी खाली हैं। प्रतिरोध के प्रति वफादार धड़ा और हिजबुल्ला सरकार के शीघ्र गठन के इच्छुक हैं। वफादार धड़ा साद हरीरी का आह्वान करता है कि वो नई सरकार के गठन के लिए विचार विमर्श नए सिरे से आरंभ करें। लेबनान में विभिन्न धड़ों पर अमेरिकी दबाव यथावत जारी है। अमेरिका हमेशा अपने दबावों को लेबनान पर जारी रखेगा। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार सत्ता में है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी हित अशांति उत्पन्न करने और देशों की अस्थिरता में है। लेबनानी शीघ्र सरकार के गठन को आर्थिक स्थिति और अपनी राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिति के बेहतर होने से अवगत हैं। सरकार गठित होने से स्थिति बेहतर हो सकती है और हमें इस बात की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि अमेरिका हमारे लिए दायित्व निर्धारित करे। लेबनानी टीकाकार इस देश की सेना, जनता और प्रतिरोध को सरकार गठन का बेहतरीन आधार मानते हैं। कुछ लेबनानी संचार माध्यमों ने भी घोषणा की है कि इस देश की नई सरकार के गठन के लिए विभिन्न पार्टियों व धड़ों की बैठक अगले दिनों में आयोजित होने वाली है। हसन अजीमजादे, IRIB, बेरूत।
जम्मू में आज शिया फेडरेशन नामक धार्मिक गुट ने पाकिस्तान में हजारों शियों के साथ जो कुछ हुआ उस पर खेद प्रकट किया है। पाकिस्तान के क्वेटा नगर में मारे गए हजारों शिया मजदूरों के समर्थन में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारी हत्या के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी जम्मू में शिया फेडरेशन नामी धार्मिक और राजनीतिक संगठन ने आज पाकिस्तानी शहर क्वेटा में पेश आई घटना, जिसमें गेरा के निकट शिया मजदूरों को आतंकवादियों के द्वारा हताहत कर दिया गया था और उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई थी उस पर खेद प्रकट किया। प्रदर्शनकारी पुरजोर मुतालबा कर रहे थे कि जो भी इस घटना में आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शिया फेडरेशन के प्रमुख आशिक हुसैन खान ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि शियों के साथ जो पाकिस्तान में बीती है वो विश्व के सामने है। पिछले 12 वर्षों से आए दिवस शियों का कत्लेआम किया जा रहा है और ये नरसिंहार है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो रवैया अख्तियार किया है वो निंदनीय है, क्योंकि वो मजलूमों के साथ उठ खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो स्थिति अब पाकिस्तान में पैदा हुई है और आए दिवस जिस तरह से हजारा कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, विश्व को चाहिए कि वो इसका नोटिस लें। उन्होंने कहा कि आतंकवाद जिस तरह से वहां पनप रहा है और आतंकवादी आए दिवस जिस तरह से शियों को टारगेट कर रहे हैं, इस पर विश्व को सोचना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शिया आज के इन परिस्थितियों में अपने आप को महफूज तस्वर नहीं कर रहा है। उन्होंने इस अवसर पर कहा,
ये पिछले 10-12 साल से एक ही कम्युनिटी के ही नहीं बल्कि तमाम जो मुसलमान हैं गाड़ियों से उतार उतार कर मुनाकिद कर करके उनका कत्लेआम किया गया। जो भी सिफिया से जुड़ा हुआ है, जो कवाल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, सबको उन्होंने एक एक करके पिछले 10-12 साल से मारते रहे।
इस बीच कश्मीर में एक बार फिर हिमपात हुई है, जिसके कारण एक बार फिर तमाम मार्ग बंद हुए हैं, जबकि आज भी श्रीनगर के एयरपोर्ट से एयर ट्रैफिक में काफी इसका प्रभाव पड़ा है। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मशीनरी को फौरी तौर पर काम पर लगा दिया है और देर गए तक सड़कों को साफ किया जाएगा, परंतु जो स्थिति हिमपात के कारण बनी हुई है वो इंतहाई गंभीर है। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नया सवेरा, पर उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में भी हम दक्षिणी खुरासान प्रांत की यात्रा जारी रखेंगे और आज आपको इस प्रांत के सुंदर नगर बिरजंद की यात्रा कराएंगे। बिरजंद ईरान का एक प्राचीन नगर है जो केसर, दारू, हल्दी, सूखे मेवों और हाथ से बुने फर्शों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बिरजंद ईरान का पहला शहर है जहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से कि वर्ष 1302 में और तेहरान से पहले पानी पहुंचाने के पाइपलाइन वहां बिछाई गई। ये नगर समुद्र की सतह से 1491 मीटर की ऊंचाई पर है। बिरजंद एक अति प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। इस बात के दृष्टिगत इस नगर में बहुत सी मूल्यवान व आकर्षक चीजें मौजूद हैं। इस शहर का एक सुंदर और आकर्षक अवशेष बिरजंद दुर्ग है जो दक्षिणी खुरासान प्रांत का एक पर्यटन स्थल भी है। बिरजंद का जो दुर्ग है उसे तेह, दह और पाइन शहर के नाम से भी पुकारा जाता है और इसे बिरजंद नगर की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत समझा जाता है। यह दुर्ग बिरजंद नगर के पूर्व में एक टीले पर स्थित है। यह दुर्ग 2 मंजिला है और इसके चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं, जबकि एक मीनार इसके बीच में और दुर्ग के दक्षिणी भाग में है। इस दुर्ग में 2 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक इसके पश्चिमी कोने पर और दूसरा इसके पूर्वी कोने पर स्थित है।
बिरजंद का यह दुर्ग 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर बना हुआ है और इसका निर्माण सफवी काल में हुआ था। वास्तव में इसे बिरजंद की पहली इमारत समझा जाता है। अलबत्ता कुछ लोगों का मानना है कि इस दुर्ग का निर्माण सफवी काल से पहले का है। बिरजंद दुर्ग का निर्माण ईंट और मिट्टी से किया गया है और सफवी काल से लेकर काजारी काल तक ये बिरजंद नगर के लोगों को दुश्मनों, विशेषकर तुर्कमन लोगों के हमलों से बचाता था। काजारी काल में इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करके इससे लाभ उठाया जाता था। इस दुर्ग में 7 मीनारें थीं, जिनमें से अब 6 रह गई हैं। इस दुर्ग की मरम्मत का कार्य 1378 हिजरी शमसी में बिरजंद की नगरपालिका की ओर से आरंभ कराया गया था।
दोस्तों, हर नगर के जो प्राचीन भाग होते हैं उनकी गणना आम तौर पर नगर के दर्शनीय स्थलों में होती है। उसकी वजह यह है कि आम तौर पर लोग नगर के प्राचीन भाग को देखने के बाद नगर के अतीत और उसके इतिहास से परिचित होते हैं। बिरजंद नगर की जो प्राचीन बनावट है उसमें हमें शौकतिया नाम का एक मदरसा भी दिखाई देता है, जिससे हम पिछले कार्यक्रम में अवगत हो चुके हैं।
दोस्तों, बिरजंद नगर का पहला पोस्ट व टेलीग्राफ कार्यालय भी नगर का एक अन्य दर्शनीय स्थल है जो इसकी प्राचीन संरचना में मौजूद है। इस कार्यालय का संबंध काजारी काल से है और दक्षिणी खुरासान प्रांत की सांस्कृतिक धरोहर संस्था के प्रयास से इसका पुनर्निर्माण किया गया है। बिरजंद की ऐतिहासिक संरचना में इस नगर के जल भंडार भी हैं, जिनकी गणना नगर के दर्शनीय स्थलों में होती है। इन जल भंडारों का निर्माण इस क्षेत्र में मरुस्थली भागों में किया गया है। इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण जल भंडार का नाम अली रजा बीक है, जो देश के पूर्व में स्थित गिने चुने जल भंडारों में से एक है, जो खुला हुआ और पर्यटकों के देखने के लिए तैयार है।
बिरजंद नगर का एक प्राचीन बाजार भी है जो नगर के दर्शनीय स्थलों में से है। ये बाजार लगभग 300 साल पहले से है, जो अभी भी नगर के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस बाजार में एक कारवांसराय भी है और बाजार के असली भाग में विभिन्न कमरे हैं, जिनमें विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय के कार्यालय हैं। इसी कारण इस बाजार की गणना बिरजंद के दर्शनीय स्थल में होती है। इस बाजार का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा, रोचक, आकर्षक और बेजोड़ है, क्योंकि अतीत में वो अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इसी प्रकार विभाजन से पहले भारत के पड़ोस में था और आज भी इस बाजार के अद्वितीय वातावरण का आभास किया जा सकता है। ये बाजार सूखे मेवों, केसर, दारू, हल्दी और हाथ से बुनी हुई चीजों की खरीदारी के लिए बेहतरीन जगह है।
बिरजंद में हाथ की बनी हुई जो चीजें हैं उन्हें बहुत पसंद किया जाता है, जैसे टोकरी, गुलदान और चटाई से बनी हुई पानी की छननी। ये वे चीजें हैं जिन्हें स्थानीय मर्द और महिलाएं बेर आदि के पेड़ों की टहनियों और शाखों से तैयार करती हैं। इसी प्रकार बिरजन नगर में पारंपरिक कपड़े बुने जाते हैं, जिनकी गणना विशेषता की दृष्टि से ईरान के बेहतरीन कपड़ों में की जाती है और इस कपड़े की बुनाई को स्थानीय भाषा में बरक बॉफी कहा जाता है।
दोस्तों, बिरजंद नगर के जो दर्शनीय वस्तुएं हैं उनमें से कुछ को देखने के लिए नगर से बाहर चलकर कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी। उनमें से एक बाग और इमारत मासूमिया नाम का भवन है जो बहुत ही सुंदर है और ये बिरजंद नगर के 5 किलोमीटर पश्चिम है, जहां से अपनी सुंदरता का जलवा बिखेर रहा है। इमारत मासूमिया नाम का जो भवन है ठीक उसके सामने पानी का एक बहुत बड़ा हाउस है जो बहुत ही सुंदर ढंग से बना है और इस हाउस और इमारत के पास जो बाग है उसके कारण इमारत की सुंदरता में 4 चांद लग गया है। इस इमारत की वास्तुकला का संबंध पहलवी शासन से है।
दक्षिणी खुरासान प्रांत में हिंदुलान जामे मस्जिद है। ये बहुत ही भव्य और सुंदर मस्जिद है जो दरमियान उपनगर में है और इस मस्जिद को देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों लोग आते हैं। इस मस्जिद को देखने के लिए बिरजन नगर के समीप हिंदुलान नामक गांव से गुजरना पड़ता है। इस मस्जिद में बहुत से शिलालेख हैं जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि इस मस्जिद का संबंध 5वीं या 6वीं हिजरी शताब्दी से है। इसी प्रकार इस मस्जिद में कुछ दूसरे शिलालेख हैं जो इस बात के परिचायक हैं कि 1237 हिजरी में इसकी मरम्मत की गई है। इस मस्जिद का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर व आकर्षक है जो देखने वालों को अपनी ओर लुभाता व आकर्षित करता है। जब हम मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं तो उसके प्रांगण, गुंबद और हॉल दिखाई देते हैं जो बहुत ही सुंदर हैं।
संगसार हाय काल चंगाल नाम का एक पिरचु गैप भी है जो बिरजंद के मूल्यवान ऐतिहासिक अवशेषों में से है। इसे देखने के लिए बिरजंद नगर से लगभग 35 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है जो जमानाबाद गांव के निकट एक दर्रे में स्थित है। जिस दर्रे में ये पिरचु गैफ है उसका नाम काल चंगाल है और ये बाकिरान पर्वत माला में है। इसमें 12 शिलालेख और 2 तस्वीरें थीं, जिनमें से इस समय केवल 7 शिलालेख बाकी हैं। इसमें जो तस्वीरें और शिलालेख हैं उन्हें अलग अलग पत्थरों पर उकेर कर बनाया गया है। कुछ शिलालेख केवल एक पंक्ति के हैं जबकि कुछ दूसरों में कई पंक्तियां हैं। इस पिरचुग्लैफ में पत्थर को उकेर कर जो तस्वीरें बनाई गई हैं उनमें एक तस्वीर में आधे मर्द को दिखाया गया है जबकि दूसरी तस्वीरें पूरे मर्द को शेर से लड़ते हुए दिखाया गया है।
तस्वीरों को जिस तरह से सजाया गया है उनके बालों और वस्त्रों को देखकर कहा जा सकता है कि उनका संबंध अश्कानी काल से है। बिरजन का जो पिरचुग्लैफ है वो केवल काल चंगाल तक सीमित नहीं है बल्कि एक दूसरा पिरचुग्लैफ भी है जिसका नाम संग निगार हाय लाख मजार है और ये बिरजन के कूच नामक गांव में है और इसे दक्षिणी खुरासान प्रांत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष समझा जाता है। इन कलाकृतियों को एक चट्टान पर उकेर कर बनाया गया है। जिस चट्टान पर इन कलाकृतियों को उकेर कर बनाया गया है वो 5x5 है और ये हरे रंग की चट्टान काले रंग से मिलती जुलती है और इसका संबंध इतिहास से पहले के दौर से है। निगरहाय लाख मजार नाम का जो पिरचुग्लैफ है उसमें 307 कलाकृतियां हैं जिसमें इंसानों, जानवरों, जड़ी बूटियों की तस्वीरें हैं और उसमें पहलवी अश्कानी सासानी काल के अरबी और फारसी भाषा में शिलालेख हैं। इस पिरचुग्लैफ में इंसानों की 22 तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरों में इंसानों को शिकार, युद्ध और प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार इस पिरचुग्लैफ में जानवरों और पक्षियों की 33 तस्वीरों को दिखाया गया है।
दोस्तों, दक्षिणी खुरासान प्रांत का एक दर्शनीय व पर्यटन स्थल बंद दर्रा नाम का एक बांध है। इस बांध की प्राचीनता का संबंध जंदिया काल से लेकर काजारी काल तक पहुंचता है, और चूंकि पानी इस दर्रे के ऊपर नीचे भाग से होकर गुजरता है, इसलिए यह दर्रा इस नाम से मशहूर हो गया है। ये बिरजंद नगर का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पर्वतीय बांध है, और इसका निर्माण 1294 हिजरी कमरी में अमीर शौकतुल मुल्क के आदेश से किया गया था। इसके निर्माण में पत्थर, ईंट और चूने आदि का प्रयोग किया गया है। ये बांध लगभग 13 मीटर ऊंचा, 3 से 5 मीटर चौड़ा और 31 मीटर लंबा है। इस बांध की दीवार नीचे से 8 मीटर तक मोटी है। यहाँ इस बात का उल्लेख करते चलें कि 1381 हिजरी शमसी में इस बांध का नाम ईरान की राष्ट्रीय धरोहर की सूची में पंजीकृत कर लिया गया है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। नया सवेरा।
दोस्तों, कार्यक्रम नया सवेरा के अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहर दादी, और कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में बताएंगे कि एक यूरोपीय युवती ने किस प्रकार से इस्लाम को अपनाया।
इस्लाम के फैलाव में जहाँ पर इस धर्म का मानव की प्रवृत्ति और बुद्धि से निकट होना प्रभावी रहा है, वहीं पर इसमें कई अन्य आकर्षण भी पाए जाते हैं। इस्लाम को फैलाने में मुसलमानों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। हालांकि अफसोस की बात यह है कि कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्होंने इस धर्म को ठीक से नहीं समझा, और अपनी गलत समझ के आधार पर उन्होंने दूसरों को इस्लाम बताना शुरू कर दिया। इसका परिणाम ये निकला कि ताज़ा मुसलमान को वास्तविकताओं का पता ही नहीं चल पाता।
इस्लाम की गलत छवि को पेश करने में वहाबी विचारधारा सबसे आगे है। ये वो गुट है जिसको सऊदी अरब से आर्थिक मदद मिलती है और इसको पश्चिमी सरकारों का समर्थन हासिल है। ये गुट इस्लाम के खोजियों को गलत रास्ता बताकर उनको गुमराह करते रहते हैं। मैरिन भी ऐसी ही एक महिला हैं जो वहावियों के कहने पर इस्लाम लाईं, और उनकी अतिवादी विचारधारा के कारण एक समय ऐसा भी आया कि जब उन्होंने शांतिपूर्ण धर्म को छोड़ने का फैसला कर लिया था, किंतु वास्तविक इस्लाम की पहचान के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया।
मैरिन का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। उनके घर वाले अधर्मी तो नहीं थे, किंतु धर्म से उनको कोई विशेष लगाव भी नहीं था। मैरिन की दादी किसी सीमा तक धार्मिक रुझान रखने वाली महिला थीं। हालांकि यहाँ पर इस बात का उल्लेख जरूरी है कि ईश्वर को अनदेखा करना वास्तव में अपनी प्रवृत्ति के विपरीत जाने जैसा है। یہ بھی ایک واستوکتا ہے کہ وہ لوگ جو سرشٹی کے رچیتا یا دوسرے شبدوں میں ایشور پر بھروسہ نہیں کرتے ان کے پاس پریشانیوں کے سمے کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اس پرکار کے لوگوں کے جیون میں کوئی نردھارت لکش نہیں ہوتا ہے۔
میرن کو بچپن سے یہ وشواس تھا کہ سنسار کا کوئی سرشٹکرتا اوشیہ ہے، حالانکہ اس کے پاس اس کے سمرتھن میں کوئی پرمان نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے پریوار والوں کے وپریت میں ایشور پر بھروسہ کرتی تھی۔ میرا شروع سے یہ ماننا تھا کہ اس سرشٹی کو کوئی چلا رہا ہے جو سارے انسانوں سے ادھک مضبوط ہے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھے ایشور کی تلاش کے لیے پریرت کر رہا ہے۔ میں اپنے من کی بات کو شبدوں میں سمجھا تو نہیں سکتی تھی، کنتو میرے بھیتر یہی بھاونا گھر کر گئی تھی کہ نشچت روپ سے سنسار کا کوئی سنچالن کرنے والا ہے۔
انہی باتوں کے درشٹیگت میرن نے چرچ جانا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سپتاہ میں 3 بار چرچ جایا کرتی تھی۔ میرن کے اس کام کا ورودھ ان کے ماتا پتا نے آرمبھ کیا۔ اپنے ماتا پتا کا ورودھ دیکھتے ہوئے میرن نے کچھ سمے کے لیے چرچ جانا روک دیا، کنتو کچھ ہی دنوں کے بعد ایک دوسرے چرچ میں وہ جانے لگیں۔ وہاں جانے کے بعد میرن نے وہ سوال پوچھنے شروع کر دیے جو ان کے من میں بھرے ہوئے تھے۔ اپنے پرشنوں کے سنتوش جنک اتر نہ پا کر میرن پریشان رہنے لگی۔
میرن کا کہنا ہے کہ بات کبھی بھی میرے گلے سے نیچے نہیں اتر پائے کہ ایشور کے کوئی سنتان بھی ہے۔ یہی کارن ہے کہ میں عیسیٰ مسیح کو ایشور کا پتر نہیں مانتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ ایشور کو ایک ہونا چاہیے، انیک نہیں۔ شاید یہی بات تھی جس کے کارن میرن نے یہ جاننے کے لیے قدم اٹھایا کہ کیا واسطو میں ایشور ایک ہی ہے یا انیک۔
اسی بیچ میرن کو یہ پتا چلا کہ مسلمان ایک ایشور کو مانتے ہیں۔ میرن کا کہنا ہے کہ میں نے یہ تو سنا تھا کہ مسلمان ایک ایشور کو مانتے ہیں، کنتو سنچار مادھیم میں جس روپ میں وہ مسلمانوں کو دیکھتی تھیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ تو کیول مار کاٹ ہی کرتے ہیں، ایسے دھرم کو اپنا کر میں کیا کروں گی۔ میرن کہتی ہیں کہ سنچار مادھیموں میں مسلمانوں کی چھوی دیکھ کر میرے من میں اسلام کی نکاراتمک چھوی بننے لگی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر یہی اسلام ہے تو پھر اسے تو دور سے ہی سلام۔ وہ کہتی ہیں کہ اسلام کے بارے میں ابھی دویدھا میں ہی تھی کہ میری دوستی ایک مسلمان سے ہوئی۔ جب میں نے اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے جس ایشور کے بارے میں مجھ کو بتایا وہ وہی تھا جس کی تلاش میں رہتی تھی۔
میرن کہتے ہیں کہ بعد میں میرے کچھ اور بھی مسلمان دوست بن گئے۔ اب میں ان کے ساتھ ان کے دھرم سل بھی جاتی تھی۔ ان لوگوں کا پریاس یہ تھا کہ میں جلد سے جلد اسلام کو اپنا لوں، حالانکہ میں اور ادھک اسلام کے بارے میں ادھیان کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا یہ ماننا تھا کہ میں اس ستھتی میں اس دھرم کو سویکار کروں گی جب میں شت پرتیشت نشچت ہو جاؤں کہ واسطو میں یہی دھرم صحیح ہے اور ایشور ایک ہی ہے۔ میرن کا کہنا ہے کہ میرے دوست اب بھی مجھ پر جلدی مسلمان ہونے پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت سنکھیا 256 میں ایشور کہتا ہے کہ دھرم سویکار کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ صحیح مارگ پتبھرشتتا سے الگ و اسپشٹ ہے۔ اسلامی شکشاؤں کے انوسار ایشوری دوتوں نے کبھی بھی کسی کو ایمان لانے پر وش نہیں کیا، کیونکہ زبردستی کے ایمان اور وشواس کا کوئی مہتو نہیں ہوتا۔ اس دھرم کا مہتو ہوتا ہے جو جانکاری اور پہچان پر آدھارت ہو تتا جسے سوتنترتا ایون سوچا سے گرہن کیا گیا ہو۔
اس حساب سے وہ لوگ جو میرن کو اسلام سویکار کرانے میں جلدی کر رہے تھے وہ کوئی اچت کام نہیں کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی راجنیتک یا پراچارک لکش کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ وہابی لوگوں کا ایک گٹ تھا جو میرین پر جلد اسلام سویکار کرنے پر لگاتار دباؤ ڈال رہا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ تم اسلام سویکار کر کے ایک آئیڈیل بن جاؤ، تم دوسروں کو بتاؤ کہ اسلام ایک اچھا دھرم ہے۔ میرین کہتی ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھ کو اسلام کے بارے میں ابھی اور ادھیان کرنا ہے، میں سوچ سمجھ کر ہی کوئی فیصلہ کروں گی۔ حالانکہ بعد میں گہن ادھیان کرنے کے بعد میرین نے سویچھا سے اسلام کو قبول کیا اور وہ مسلمان بن گئیں۔
میرین کی گھٹنا کے سندرب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ واسطو میں وہابیوں کے گٹ کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر غیر اسلامی باتوں کا پرچار کرتا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کا مارگ درشن کرنے کے بجائے انہیں پتبھرشٹ کر رہے ہیں۔ جو بھی ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اس کو وہ مسلمان نہ بنا کر وہابی بناتے ہیں اور پھر اس پر اسلام کا لیبل چپکا دیا جاتا ہے۔ اس وچاردھارا سے پربھاوت لوگوں کو ادھکانش ہنسک کاروائیوں میں لپت دیکھا گیا ہے۔ سیریا، عراق، یمن اور افغانستان میں جو پشچمی آتنکوادی سکریہ ہیں وہ اسی بھرشٹ وچاردھارا کا نتیجہ ہے جو اسلام کے نام پر بے گناہوں کی ہتیا کرتے ہیں۔ پشچمی سنچار مادھیموں کے لیے یہ بہت اچھی خوراک ہے، انہیں کے مادھیم سے وہ پوری دنیا میں عام مسلمان کو جھگڑالو اور ہنسک دکھاتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیشہ سے شانتی کا سمرتھن کرتا ہے۔ دوستو، کارکرم کا سمے سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
آشا ہے اس سبھا کے کارکرم آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ کارکرموں کے بارے میں آپ کے وچاروں کا انتظار رہے گا، جسے آپ ہمارے ای میل آئی ڈی پہ بھیج سکتے ہیں، hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ واٹس ایپ پر ہمارا نمبر ہے 00989035065492۔ تو اسی کے ساتھ یہ سبھا سماپت ہوتی ہے۔ محمد علی قمی اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ شبھ راتری، خدا حافظ۔